بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. اس سورت کا نام سورت القیامہ ہے. قیامت اسی کے نام سے یہ پوری سورت ہے. یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی مکی سورت ہے. 40 آیتیں ہیں سورہ القارعہ کے بعد, اور سورہ حمزہ سے پہلے 31 نمبر کے اوپر نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں قیامت کے دن کی قسم کھائی ہے. اندازہ لگاؤ قیامت کا دن کتنا بھاری دن ہوگا کہ خود اللہ تعالیٰ اس کی قرآن میں قسم کھا رہے ہیں. ایسے لغت میں, ڈکشنری میں قیامہ کا میننگ ہوتا ہے ایک مرتبہ کھڑا ہونا, ایک بار میں کھڑا ہونا. اور قیامت کے دن تمام انسان ایک بارگی یعنی ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. سب لوگ میدان کے اندر ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. اور قیام کے ایک معنی ثابت ہونے کے بھی آتے ہیں, یعنی قیامت ثابت ہے, اٹل ہے, چوکس آنے والی ہے, یقیناً آنے والی ہے. اس سورت کے اندر اللہ تعالی نے قیامت کی وہ حالت بیان فرمائی کہ قیامت پہلے آنکھوں کے اوپر آئے گی, فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَر, آنکھ پر آئے گی, پھر دل پر پہنچے گی قیامت, یعنی آنکھ قیامت کا بھیانک منظر دیکھے گی, پھر دل گھبرا جائے گا اور پورا بدن انسان کا کانپنے لگے گا. جیسے کہ اس سے پہلے والی صورت کے اندر فَإِذَا نُفِخَ فِي النَّاقُورِ, نقارے کی آواز قیامت کے لیے بتلائی گئی کہ جیسے کہ نقارے کی, نگارے کی, ڈھولک کی آواز ہوتی ہے, اس طرح قیامت کے دن کی بھی بھیانک آواز ہوگی. اور اس صورت کے اندر قیامت کی دلیلوں کو اللہ نے صاف صاف لفظوں میں بیان کر دیا. اس طریقے سے بیان کیا کہ اب اس قیامت کو ہم جھٹلا نہیں سکتے, اس قیامت کا ہم انکار نہیں کر سکتے. ہر ایک کو قیامت کو مان لینا پڑے. ترجمہ دیکھو, میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. یہ لا کا ایک میننگ یہ ہے کہ سامنے والے کے دماغ کے اندر جو بھوسا بھرا ہوا ہے, جو غلط بات جمی ہوئی ہے, ایسا نہیں ہے. سامنے والے مکہ کے کافر یہ سمجھتے تھے کہ قیامت نہیں آئے گی تو لا لا, تمہاری بات غلط ہے, تمہاری بات صحیح نہیں ہے, قیامت آنے والی ہے. آگے فرمایا, اور قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی. ملامت کرنے والا نفس کیا ہوتا ہے؟ جو نفس آتما ہر وقت انسان کو زیادہ نیکی کرنے کے لیے ٹوکتا رہتا ہو, جو آتما اندر سے کہتا ہو اے زیادہ نیکی کر, قرآن زیادہ پڑھ, تسبیح زیادہ پڑھ, تلاوت زیادہ کر, جو اندر سے ٹوکتا رہتا ہو اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں. اور تفسیروں میں عجیب بات لکھی ہے کہ کافروں کو اس کا نفس اور آتما کفر پر قیامت کے دن ملامت کرے گا, ڈانٹے گا, तमाम काफिरों का आत्मा नफ्स कयामत के दिन डांटेगा कि तूने दुनिया में क्यों कुफ्र किया। और ईमान वालों का जो नफ्स है वो कयामत के दिन ईमान वालों को डांटेगा कि तूने दुनिया में नेकी ज्यादा क्यों नहीं की। ज्यादा नेकी करनी चाहिए, ज्यादा नेक काम करने चाहिए थे। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि कयामत के दिन हर इंसान का नफ्स लवामा हो जाएगा, हर एक को मलामत करेगा, नेक आदमी को डांटेगा कि तूने नेकी ज्यादा क्यों नहीं की, अपनी जिंदगी का टाइम बेकार क्यों बर्बाद कर दिया। और बुरे आदमी का नफ्स यूं डांटेगा कि तूने क्यों बुराई की, क्यों गुनाह किए। इसीलिए एक हदीस शरीफ में यूं आएगा, आता है कि जन्नत वालों को जन्नत में किसी चीज का अफसोस नहीं होगा। जन्नत कोई अफसोस करने की चीज थोड़ी है, लेकिन दुनिया के अंदर वो टाइम, वो मिनट, वो सेकंड जो अल्लाह के जिक्र के बगैर गुजार दिया, उस टाइम को याद करके मोमिन जन्नत में भी अफसोस करेगा। इसीलिए भाइयों और दीनी बहनों, जन्नत में जाने के बाद अफसोस न होवे। इसीलिए दुनिया का टाइम बर्बाद मत करो, दुनिया का टाइम बेकार मत करो। और ये इंसान का नफ्स अजीब है, ये नफ्से लवामा अजीब है, कभी दुनिया की तरफ आता है, शहवत की तरफ आता है, और कभी अल्लाह की तरफ माइल होता है, अल्लाह की तरफ जो है मुतवज्जे होता है। तो दोनों तरफ उसका ताल्लुक है। और देखो, हर इंसान कोई न कोई कोताही, कमी, फॉल्ट करता ही करता है। तो हमेशा अपने नफ्स की मलामत में इंसान रहता है कि तूने ये कोताही की, तूने ये कमी की, तूने ये भूल की। हर इंसान का आत्मा अंदर से डांटता है कि तूने ये कमी की, ये भूल की, तुझसे ये भूल क्यों हो गई। और इंसान अपने गुनाहों को जब याद करता है, पछताता है और अल्लाह के सामने माफी मांगता है, तो अंदर से नफ्स यूं बोलता है, क्यों गुनाह किए, क्यों नाफरमानी की, रो रो अल्लाह के सामने, रो, माफी मांग। और ये नफ्स बहुत अच्छा है, नफ्से लवामा, कि जो खुद अपने कामों का हिसाब करे और मलामत करे, डांटे। देखो, आदमी के ऊपर बॉस होता है, कोई वेटर हो, नौकर हो, मजूर हो, ऊपर बॉस होता है, तो वो बॉस बराबर देखता है कि ये काम करता है नहीं करता है, काम में इधर उधर करे तो वो डांटेगा, खिजवाएगा। तो हमारा नफ्स, हमारा आत्मा, ये भी हमारा सुपरवाइजर है जो अंदर बैठे बैठे हमारा हिसाब कर रहा है। और हमसे कोई भूल हो जावे तो वो मलामत करता है, डांटता है, खिजवाता है। और ये इंसान, ये भी, ये नफ्स आत्मा अंदर से ये भी डांटता है कि जरूरी काम में कोताही हो गई, फुलाना काम जरूरी था, कंपलसरी था, इम्पोर्टेंट था, तूने क्यों नहीं किया, और नेक काम क्यों कम किया, नेक काम क्यों ज्यादा नहीं किया। अंदर से वो डांटता है। और कभी इखलास में कमी रह जाए, आदमी कोई काम करे लेकिन लोगों को दिखलाने के लिए करे, तो अंदर से नफ्स डांटता है, अबे अल्लाह के लिए करना चाहिए, क्यों लोगों को दिखलाने के लिए किया। कभी आदमी कोई अमल करता है और वो सुन्नत तरीके के मुताबिक जैसा होना चाहिए ऐसा नहीं होता, कमी होती है सुन्नत तरीके से करने में, आदाब के मुताबिक करने में, तो अंदर से आत्मा डांटता है कि तूने सुन्नत तरीके से कमा हक कहो अमल क्यों नहीं किया, इत्मीनान से नमाज क्यों नहीं पढ़ी, गीबत से बच के रोजा क्यों नहीं रखा। ऐसा नफ्स बहुत अच्छा है, इसीलिए उस नफ्स के इकराम में अल्लाह ने कुरान में उसकी कसम खाई। अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा, क्या इंसान ये ख्याल करता है कि हम उसकी हड्डियों को हरगिज इकट्ठा नहीं कर सकेंगे। ले ये इंसान कैसे कैसे सोच सोचता है कि मैं मर जाऊंगा, मेरी हड्डी सब इधर उधर चूरे चूरा हो जाएगी, अल्लाह उसको जमा नहीं कर सकेंगे, उसको दोबारा हार्ड पिंचर और बदन नहीं बना सकेंगे, ऐसा सोचते हो? गलत सोचते हो। अल्लाह तमाम इंसानों को कयामत के दिन दोबारा पैदा करेंगे। बल युरीदुल इंसानु लियफजुर अमामा, बला कादिरीना ला अन नुसव्विय बनाना, क्यों नहीं जबकि हम को इस बात पर भी कुदरत और ताकत है कि उसकी उंगलियों के पोरों को ठीक ठीक बनावे। अजीब अल्लाह ताला की कुदरत है भाई। ये पोरवे हैं ना, पोरवे ये चमड़ी के हैं, चमड़ी के उंगली के पोरवे, टेरवे जिसको गुजराती में बोलते हैं, उर्दू में पोरवे बोलते हैं, टेरवे। अब ये जो चमड़े के बने हुए हैं, और अजीब बात, हकीम लोग इसको हाथ लगा के अंदाजा करते हैं पूरे बदन की तबीयत कैसी है। गोया कि इंसान की पूरी बॉडी में जितने भी अवयव है, आजा है, उसमें मौतदिल यानी दरमियान दरमियान का उज्व हिस्सा अगर कोई है तो ये पोरवा है, और इसी पोरवे के ऊपर इंसान की पैदाइश पूरी होती है। पोरवा बन गया, इंसान पूरा बन गया मां के पेट में। तीसरी बात ये है कि ये पोरवे बहुत नाजुक, बहुत नाजुक, ठंडी भी इसको ज्यादा लगेगी, गर्मी भी लगेगी, पानी भी ज्यादा लगेगा। इसीलिए किसी चीज को चेक करना हो तो हम पोरवा लगाते हैं कि दूध गर्म है कि नहीं है, बिरयानी गर्म है कि नहीं है, फलूदा ठंडा है कि नहीं है, वो पोरवा लगा के देखते हैं। ये बहुत सिंसर, बहुत नाजुक ये पोरवे होते हैं। चौथी बात ये है कि ये इंसान के बदन में बिल्कुल एंड में है, अखीर में है। हाथ में देखो तो बिल्कुल नाके पर, पैर में देखो तो बिल्कुल नाके के ऊपर। अजीब, इसीलिए आप ब्लड टेस्ट कराने जाएंगे तो उंगली के ऊपर जरा सी सुई मार के वहां से खून ले लेंगे। अजीब अल्लाह ताला की कुदरत है ये पोरवे। पूरे बदन के अंदर सबसे छोटा अगर कोई उज्व है, अवयव है, तो ये पोरवा है। लेकिन उसमें अल्लाह की कारीगरी बड़ी अजीब है। ये पोरवे के अंदर जो छोटी छोटी झीणी झीणी बारीक बारीक लकीर निशानियां बनी हुई है, वो करोड़ों इंसानों में भी एक जैसी नहीं हुआ करती। अजीब अल्लाह की कुदरत। तमाम इंसानों के पोरवों के अंदर जो निशानी स्केच है वो बिल्कुल अलग है। इसीलिए तो अब फिंगर प्रिंट ली जाती है एयरपोर्ट पर, सिक्योरिटी में फिंगर प्रिंट, और दस्तावेज में भी अंगूठा मरवाया जाता है, सरकारी कामकाज में भी अंगूठा मरवाया जाता है। क्यों? इसलिए कि सिग्नेचर, सही, ये दस्तखत जो किए जाते हैं, ये तो टू कॉपी हो सकती है, बनावटी हो सकती है सिग्नेचर तो, लेकिन ये जो अंगूठा मारते हैं, उंगलियों के जो निशान लेते हैं, फिंगर प्रिंट लेते हैं, ये करोड़ों इंसान के भी सेम सेम और बराबर नहीं हो सकते। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, कैसी मेरे अल्लाह की कुदरत। بل يريد الانسان ليفجر امامه, بلکہ قیامت کے انکار کی وجہ اور ریزن یہ ہیں کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے آگے کی زندگی میں بے باک ہو کر کھلے گناہ کرتا رہے. یہ انسان کو جو ہے نا اللہ کی مرضی پر عمل کرنا بہت بھاری لگتا ہے. وہ یوں سوچتا ہے کہ میں بنداس رہوں, آزاد رہوں, فری لائف زندگی گزاروں. یہ انسان چاہتا ہے اور فیوچر کے لیے بھوشیہ کے لیے بھی غلط ارادے رکھتا ہے, گناہ کے کام کے جذبات رکھتا ہے, گناہ کے کام کے ارادے رکھتا ہے. یہ عجیب انسان کے جذبات ہے. بس رمضان ختم نہیں ہوئی تو کہا عید کے بعد فلم دیکھیں گے, عید کے بعد یہ کریں گے وہ کریں گے فلاں کریں گے ڈکنا کریں گے. توبہ توبہ توبہ, استغفر اللہ. بھوشیہ کے لیے فیوچر کے لیے تم گناہ کے خیال رکھتے ہو, ارادے رکھتے ہو, عزم رکھتے ہو, گناہوں کی پلاننگ کرتے ہو. یہ بہت گندی اور بری نیت ہے. انسان آگے کی زندگی بنداس گزارنا چاہتا ہے, توبہ کر انسان. ہماری عبادت عید کا چاند نکلنے پر ختم نہیں ہوتی, سن لو, بالکل ختم نہیں ہوتی. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ, موت کے آنے تک اللہ کی عبادت کرنی ہے. عید کا چاند نکلنے سے عبادت ختم نہیں ہوتی. میں نے اس دن کہا تھا نا آپ کو, زندگی گزارو رمضان جیسی, اللہ موت عطا کریں گے عید کے جیسی. سبحان اللہ. اسی لیے فیوچر میں بھوشیہ میں گناہوں کی پلاننگ مت کرو. بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ, انکار کرنے کے لیے سوال کرتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا. بہت سے لوگ قیامت کی ٹائمنگ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ, سو جس وقت آنکھیں چندیا جائے گی. جیسے آپ رات کو باہر نکلو اور زور سے بجلی چمکے آسمان پر, تو آنکھ کیسی ہوتی ہے کہ کچھ دکھتا وکھتا نہیں ہے, ایسی آنکھیں ہو جاتی ہے. تو قیامت کے دن ایسی چمک دمک ہوگی کہ آنکھ کی روشنی اڑ جائے گی. جیسے کوئی آدمی فل پاور ٹارچ اور بیٹری لا کے تمہاری آنکھ پہ مارے پھر ہٹاوے, تو کیسی آنکھ ہو جاتی ہے, کوئی دکھتا نہیں. ڈاکٹر کی آنکھ چیک کرانے جاتے ہیں تو آنکھ میں کیسے کیمرے مارتے ہیں, لائٹ مارتے ہیں, پھر آنکھ جو ہے ادھر کرو تو اپنے کو کچھ دکھتا نہیں. ایسا اس سے بھی زیادہ ڈینجر, اس دن اللہ تعالی کے قہر کی, غصے کی, تجلی کی روشنی ہوگی اور ایسی چمک دمک ہوگی کہ کافروں کی, نافرمانوں کی آنکھیں کچھ نہیں دیکھ سکے گی. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا, پوری زمین چمک دمک والی ہوگی تو کوئی چیز نہیں دکھے گی قیامت کے دن. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ, اور چاند کو گرہن لگ جائیں گے, یعنی قیامت کے دن چاند کالا کالا پڑ جائے گا. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ, اور سورج اور چاند کو اکٹھا کر دیا جائے گا. سورج اور چاند آج دونوں الگ الگ ہے, لیکن قیامت کے دن دونوں ایک ساتھ ہو جائیں گے. ہاں, سورج بھی کالا اور چاند بھی کالا. کالے کا میننگ کیا, دونوں کی روشنی ختم ہو جائے گی, دونوں کی لائٹنگ ختم ہو جاتی ہے. جیسے کہ سلی ٹیوب لائٹ گھر میں ہے, اب ابھی اس کو آپ نے سلگا ہی نہیں تو کیسی خالی ٹیوب لائٹ ہے, اور سلگا ہو تو وہ چمکتی ہے. تو قیامت کے دن یہ چمکتے ہوئے سورج اور چاند, اس کی روشنی اور لائٹ ختم ہو جائے گی. बुझ जाएगी और दोनों एक साथ हो जाएंगे और दोनों के निकलने की जगह भी एक साथ होगी। अभी तो कैसा है, सूरज डूबता है चांद निकलता है, चांद निकलता है सूरज डूबता है, लेकिन कयामत के दिन दोनों साथ हो जाएंगे। अजीब बात होगी कयामत के दिन। वजुमिअ अश्शम्सु वल कमर यकूलुल इंसानु यौमइज़िन अयनल मफर। कयामत के दिन इंसान ये कहेगा कि कोई जगह है जहां भाग कर चला जाऊं। दुनिया में तो वारंट आवे तो आदमी भाग जाता है, नाठ जाता है। कयामत के दिन भी भागने की जगह तलाश करेगा कि कहां मैं भाग जाऊं। कल्ला ला वजर, हरगिज भागना मुमकिन नहीं, कोई बचाव की जगह नहीं। कयामत के दिन कोई भाग नहीं सकेगा और छुप नहीं सकेगा। कल्ला ला वजर इला रब्बिका यौमइज़िन अल-मुस्तक़र। उस दिन हरेक को तुम्हारे रब ही के सामने जाकर के ठहरना है, सब को अल्लाह के दरबार में जाना है, कोई इधर उधर नहीं जा सकेगा, सबको अल्लाह के दरबार में जाना है। कोई खुशी खुशी जाएगा, जैसे ईमान वाले नेक आमाल वाले खुशी खुशी अल्लाह के दरबार में जाएंगे। बहुत से लोगों को जबरदस्ती खींच के पकड़ के फरिश्ते बांध के ले जाएंगे, घसीट के ले जाएंगे, लेकिन हरेक को जाना है, किसी को छुटकारा नहीं है, सबको अल्लाह की अदालत में जाना है, सबको अल्लाह के सामने हाजिर होना है। युनब्बउल इंसानु यौमइज़िन बिमा कद्दम व अख्खर। उस दिन हर इंसान को उसके अगले पिछले तमाम आमाल से आगाह कर दिया जाएगा। उस दिन इंसान को अपने अगले पिछले तमाम काम का, तमाम आमाल का पता चल जाएगा। भाई अगले पिछले आमाल किया है वो भी समझ लो। देखो हम दो तरह के काम करते हैं, नेकियों के, अच्छाई के और गुनाह के भी। एक काम पहले होते हैं बाद में दूसरा काम होता है। जैसे कि वुजू पहले करते हैं फिर नमाज पढ़ते हैं, तो जो काम पहले किया यानी वुजू, वो भी कयामत के दिन उसका सवाब भी सामने होगा, और वुजू के बाद जो नमाज पढ़ी वो भी सामने होगी। यही हाल गुनाह के अंदर भी है कि पहले आदमी शराब की दुकान की तरफ गया फिर शराब पी, तो शराब की दुकान की तरफ चल के गया वो गुनाह भी है और बाद में शराब पी वो भी है। तो हर अमल के अंदर जो आगे किया पीछे किया दोनों तरह के आमाल होंगे। नंबर दो, माँ बाप की खिदमत। अब जैसे कि पहले अल्लाह ताला का हक अदा किया, अल्लाह की इबादत की, ये हो गया बीमा कद्दमा व अखरा, बाद में वालिदैन का हक अदा किया, बीवी बच्चों का हक अदा किया, सब चीजें सामने होगी। बीमा कद्दमा, कोई नमाज टाइम पर पढ़ी, और अखरा, कोई नमाज नऊज बिल्ला कजा करके पढ़ी। जैसे कि ईद के दिन की बिचारी ईशा मगरिब और ईद के दूसरे दिन की फजर जनरली कजा हो जाती है नऊज बिल्ला, ऐसा नहीं करने का। तीसरा चौथा मतलब ये है कि जो काम इंसान ने खुद कर लिया, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, वो हो गया मा कद्दमा, और जो काम वो नहीं कर सका यानी अच्छा काम नहीं कर सका बुरा काम नहीं कर सका, वो हो गया वह अखरा। चौथा मतलब ये है कि जो माल अल्लाह के यहां जमा करा दिया, सदका किया, खैरात किया, वो हो गया बीमा कद्दम, अल्लाह की बैंक में जमा। और मा अखरा, जो दुनिया में छोड़ के गया वारिसों के लिए, औलाद के लिए, घर के लिए, सब पता चलेगा। तो जितना माल सदका किया, खैरात किया, अल्लाह के दरबार में जमा कर दिया, वो हो गया मा कद्दम, और जो दुनिया में छोड़ के गया वो हो गया मा अखरा। छठा मतलब समझो, जो काम इंसान आदमी खुद करे वो है बिमा कद्दमा, और जो काम खुद न करे बल्कि उसका तरीका दुनिया में छोड़ के जावे वो हो गया अखरा। जैसे कि एक आदमी ने कुरान पढ़ा वो कद्दमा, और लोगों को कुरान पढ़ा के गया, और बाद वाले लोग कुरान पढ़ेंगे उसके पास सीख लिया वो हो गया अखरा। तो जो काम इंसान ने खुद किया वो कद्दम हो गया, और जो काम खुद नहीं कर सका लेकिन उसका रास्ता चालू कर दिया, जैसे मदरसा खोला, मस्जिद बना दी, यतीम खाना बना दिया, कोई नेक काम चालू कर दिया, कोई नेकी का काम चालू कर दिया, हॉस्पिटल बना दी, ये हो गया। बाद में जो कुछ अमल करेंगे लोग सवाब मिलेगा। जैसे बाज मरतबा तुमको कोई पूछता है ना, भाई ये तुम लोग इफ्तार कराते हो लोगों को, गरीबों को, मेले वालों को? ओ वो तो मेरे दादा के जमाने से चला आ रहा है, मेरे दादा ने चालू किया था मेले के गरीबों को इफ्तार कराना, सेरी कराना, ईद के दिन शिरकुम्बा पिलाना। तो हम लोग, फिर मेरे अब्बा करते थे न, फिर मैं ये करता हूँ, मैं करता हूँ। तो बड़ों ने चालू कर दिया कोई नेक काम, अच्छा काम बाद में हो रहा है, ये सब का सवाब इंशाअल्लाह मरने के बाद मिलेगा, वो हो गया वह अखरा। और एक मीनिंग ये है माकदम, यानी जवानी में जो आमाल करे, जिंदगी के शुरू जमाने में जो आमाल करे, और माखरा यानी बुढ़ापे में जो अमल करे, कमजोर होने के बाद जो अमल करे वो हो गया बिमा कद्दम व मा अखरा। तो अगले पिछले तमाम आमाल इंसान के सामने आ जाएंगे, और इंसान के सामने जो है सारे आमाल का खुल्लम खुल्ला सवाब आएगा। बलिल इंसानु अला नफ्सिही बसीरा, बल्कि इंसान खुद अपनी जात से अच्छी तरह वाकिफ होगा। दूसरा तर्जुमा, बल्कि इंसान खुद अपने खिलाफ या अपने वास्ते खुली दलील बनेगा। देखो इंसान ने जो आमाल किए ने वो कयामत के दिन खुल्ले खुल्ले सामने आएंगे। जैसे जिन लोगों ने वुजू किया उनका चेहरा, उनके हाथ, उनके पैर, उनकी पेशानी सब चमकती होगी, खुल के आएगा सामने। अगर किसी ने दुनिया में खियानत की थी तो जो माल दो नंबरी करके खियानत करके ले लिया था वो कंधों पर होगा, सबको दिखेगा। जिन लोगों ने दुनिया में जीना किया तो उनकी शर्म की जगह पर से पीप निकलता होगा, परू निकलता होगा, बदबू निकलती होगी, और सबको पता चल जाएगा, देखो ये जानी और गलत काम करने वाले आ गए। तो हर इंसान अपने अपने आमाल की हरेक को खबर हो जाएगी, और ये कयामत के दिन तीन मरतबा होगा। पहला क्या होगा, सबसे पहले तो कयामत के दिन में फरिश्ते आएंगे, और फरिश्ते आकर के आमाल नामा, जिंदगी भर का डेटा पढ़ करके हरेक के हाथ में पकड़ा देंगे, ले ये तेरा आमाल नामा, जिंदगी का चौपड़ा सब लिखा हुआ है देख। और फरिश्ता कहेगा इकरा किताबक कफा बि नफ्सी कल यौम अलैक हसीबा। अब जब आदमी अपने डेटा को, अपने आमाल नामे को देखेगा तो अंदर जो बुरे काम है, गुनाह के काम है, उसको देखकर इनकार करेगा, हे मैंने ये काम नहीं किया था, मैंने ये काम नहीं किया था, झूठ बोलेगा। फरिश्तों को कहेगा फरिश्ते तुमने झूठ लिखा था। फिर क्या होगा दूसरे नंबर पर, आसमान, जमीन, दिन और रात, और बदन का हर हर उज्व, हर हर अंग अवयव, उसके कामों की गवाही देंगे कि ए इंसान तूने दुनिया में ये काम किया, ये काम किया, ये बुरा काम किया। जुबान बंद, और पूरी बॉडी बोलेगी, जमीन बोलेगी, आसमान बोलेंगे, दिन बोलेंगे, रात बोलेगी, और सब गवाही देंगे। अब इंसान को मजबूर होके मानना पड़ेगा कि मैंने ये गुनाह किया, ये गंदा काम किया, और इंसान बहाने करेगा। जैसे दुनिया में पकड़ा जाता है तो बाने करता है ना, तो कयामत के दिन भी बाने करेगा, वो ऐसा था ने तैसा था ने वैसा था ने यू ने तू ने ऐसा सब करेगा अजीब। फिर तीसरी मर्तबा क्या होगा, हर एक का नाम आमाल, नेक आमाल अच्छे लोगों का सीधे हाथ में दे दो, जमणे हाथ में दे दो, दाहिने हाथ में दे दो। तो जितने नेक लोग होंगे उनको उनका आमाल नामा सीधे हाथ में दिया जाएगा, और मैदाने कयामत की जमणी साइट में एक रास्ता होगा कि जाओ ये रास्ते पे जाओ तुम, वो रास्ता डायरेक्ट जन्नत में जाता होगा। और जितने गुनेगार लोग होंगे उनको बाएं हाथ में डाबे हाथ में आमाल नामा दिया जाएगा, और उनको मैदाने कयामत की डाबी तरफ का रास्ता बताया जाएगा कि जाओ ये रास्ते पे जाओ, वो रास्ता डायरेक्ट जहन्नम में जाता होगा, नऊज़ुबिल्ला उसकी तरफ उनको रवाना कर दिया जाएगा। वलौ अल्का मादीरा, चाहे वो अपने कितने ही बाने बनावे, यानी दुनिया में बाने बनाने की आदत है ना, तो कयामत के दिन भी इंसान बाने बनाएगा। इस सूरत के शान नुजूल के बारे में एक अजीब रिवायत भी सुन लो। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में रबिया का बेटा रहता था, एहदा कुछ ऐसा उसका नाम था। ये मक्का के एक डेंजर आदमी अखनस इब्ने शुरेक का जमाई था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में रहता था, और पड़ोस में रहकर हुजूर को बहुत तकलीफ पहुंचाता था, बहुत सताता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा अक्फिनी जारिसु, ए अल्लाह मेरे बुरे पड़ोसी की तरफ से तू काफी हो जा, बुरे पड़ोसी के लिए तू काफी हो जा, इसने मुझे बहुत सताया, बहुत तकलीफ दी, अल्लाह ऐसे बुरे पड़ोसी से हम सब की हिफाजत फरमाए। हदीस में एक दुआ आई है, वो मांगा करो तो बुरे पड़ोसी से हिफाजत होगी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊजु बिका मिन यौमिस सुई व मिन लैलतिस सुई व मिन साअतिस सुई व मिन साहिबिस सुई व मिन जारिस सुई फी दारिल मुकामा, ए अल्लाह बुरे दिन से, बुरी रात से, बुरी घड़ी से और बुरे पड़ोसी से और बुरे साथी से, बुरे दोस्त से अल्लाह मैं हिफाजत मांगता हूं। तो बुरे पड़ोसी से ये दुआ पढ़ा करो, अल्लाह हिफाजत में रखेंगे। फ्लैट बिकता है ना अपने बाजू का, तो सबको टेंशन में होता है, सब टेंशन में कि बाजू वाले फ्लैट वाले अल्लाह जाने कैसे आवे, कोई माथे का दुखावा नहीं आवे। पड़ोस वाला घर बिकता है तो आदमी टेंशन में रहता है कि बाजू वाले कोई डेंजर खतरनाक लोग नहीं आवे, तो ये दुआ पढ़ने की तो इंशाल्लाह बुरे पड़ोसी से हिफाजत होगी। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन यौमिस सुई व मिन लैलतिस सुई व मिन साअतिस सुई व मिन साहिबिस सुई व मिन जारिस सुई फी दारिल मुकामा। तो वो हुजूर का पड़ोसी जो बहुत डेंजर था, एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आके कहने लगा कि तुम जो सब लोगों को कयामत से डराते हो, डराते हो, डराते हो, तो मुझे बतलाओ कयामत कैसी है, मुझे बताओ कयामत कैसी है, मैं सुनूं, मैं देखूं, मेरी समझ में आती है कि नहीं आती कयामत। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको समझाया कि जितने इंसान हैं वो मरेंगे और कयामत का एक दिन आएगा, उसमें जिंदा किए जाएंगे, और जो कुछ दुनिया में है सबका हिसाब देना पड़ेगा। ऐसी बात हुजूर ने सीधी सादी उसको समझाई। तो वो कम वक्त पड़ोसी क्या कहने लगा कि तुम ऐसी बात करते हो कि अगर मैं अपनी आंख से भी देखूं ने तो भी यकीन नहीं करूं। देखो कितना खराब आदमी क्या कहता है हुजूर को कि तुम ये कयामत की जो बातें कर रहे हो ने, अगर मैं अपनी आंख से भी देखूं तो भी यकीन नहीं करूं। ये तो सब नजरबंदी है, ख्याली बातें हैं, विचारिक बातें हैं, हकीकत में कुछ नहीं है, मेरी अकल में तो ये सब बातें आती नहीं है। और कहने लगा दुनिया जगत जब से बनी हजारों साल हो गए, क्या हजारों साल में जितने इंसान मरे तमाम की हड्डियां अल्लाह जमा करके दोबारा सबको जिंदा करेंगे? बस वो मजाक उड़ाने लगा, अखनस इब्ने शुरैक का जमाई, उस पर बारी ताला ने कयामत की ये सूरत नाजिल फरमाई और उसके सामने साबित कर दिया कि कयामत यकीनन आने वाली है और कयामत का आना यकीनी चीज है। अल्लाह हम सबको कयामत का यकीन अता फरमावे, कयामत की तैयारी की तौफीक अता फरमावे और अल्लाह हम सबसे राजी हो जाए, हम सबसे खुश हो जावे। ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजल बी, रमजान की अखीरी तारीखों में 29वें सुपारे की सूरतुल कयामा शुरू हुई थी, उसकी पहली 15 आयतें हुई थी। आज इस मजलिस में 16वीं आयत से हम शुरू करते हैं। अल्लाह ताला के पाक इरशाद का खुलासा है, ए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस कुरान के उतरने के वक्त उसको जल्दी जल्दी याद करने के लिए अपनी जबान को चलाया न करो, अपनी जबान को हिलाया न करो। यूं भी तर्जुमा कर सकते हैं, इस कुरान के उतरने के वक्त इस कुरान को जल्दी जल्दी हासिल करने की गर्ज से अपनी जबान को कुरान के साथ हरकत न दिया करो, हिलाया न करो। इन अलैना जमअहू व कुरआना, यकीन रखो इस कुरान को दिल में याद करवा देना और जबान से उसको पढ़वाना हमारी जिम्मेदारी है। गोया पूरा कुरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा दिल में जमा कराना, याद कराना, ये जिम्मेदारी खुद अल्लाह ने ले ली। फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबिअ क़ुरआना, फिर जब हम इस कुरान को फरिश्ते के वास्ते से पढ़ने लगे तो जहन और फिक्र से उसके पढ़ने के साथ रहो। यानी जिस तरह जिब्राइल अमीन आकर के आपको कुरान पढ़ के सुनावे, आइंदा इसी तरह आपको पढ़ना है। कुरान उतर रहा हो तो ध्यान से सुन लीजिए, उसके अल्फाज हम आपको याद करा देंगे और आइंदा उसको अमल करना भी आपके लिए आसान कर देंगे। सुम इन्ना अलैना बयाना, फिर उसके मानी को और मतलब को खोल कर बतला देना हमारी जिम्मेदारी है। कल्ला बल तुहिब्बून अलआजिला, सुनो ये काफिरो, बल्कि असल बात ये है कि तुम जल्दी से मिलने वाली चीज यानी दुनिया से मोहब्बत करते हो। वतज़रून अलआखिरा, और तुम आखिरत को छोड़ बैठे हो। वुजूहुन यौमइज़िन नादिरा, उस कयामत के दिन बहुत सारे चेहरे एकदम खुश खुश होंगे, ताज़ा ताज़ा फ्रेश फ्रेश होंगे, रौनक वाले चमक वाले चेहरे होंगे। इला रब्बिहा नाज़िरा, अपने रब की तरफ देख रहे होंगे। वुजूहुन यौमइज़िन बासिरा, और उस कयामत के दिन बहुत सारे चेहरे उदास होंगे यानी बिगड़े हुए होंगे। तज़ुन्नु अन युफ़अला बिहा फ़ाक़िरा, और वो यूं समझ रहे होंगे कि उनके साथ कमर तोड़ने वाला मामला किया जावे, यानी ऐसा सख्त अजाब आ जावे कि जिस सख्त अजाब की सख्ती की वजह से उनकी कमर टूट जावे। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, गुजराती में भी मुहावरा है, उर्दू में भी मुहावरा है, कोई जोरदार किसी को मार पड़ी तो यूं कहते हैं कि इसने तो इसकी कमर तोड़ डाली, इसका बिजनेस ऐसा ठप हो गया, उसकी तो बिचारे की कमर टूट गई, उस पर ऐसी मुसीबत आई, उस पर ऐसी तकलीफ आई कि उसकी बिचारे की कमर टूट गई, ऐसा बोलते हैं। तो कयामत के दिन ऐसा खतरनाक अजाब आएगा कि गोया के उनकी कमर टूट जाएगी, ऐसा खतरनाक अजाब आने वाला है। अब इन आयतों में जो अहम अहम मजमून है उसको देख लेते हैं। जब हजरते जिब्राइल अमीन हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुरान लेकर के तशरीफ लाते थे, जिब्राइल तमाम फरिश्तों के सरदार है और कुरान नबी के पास लाने की जिम्मेदारी है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ होती थी और बहुत सारी तकलीफ इसलिए होती थी कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुरान आता तो हुजूर को टेंशन हो जाता, हुजूर को फिक्र हो जाती। टेंशन किस चीज का? कि जिब्राइल अल्लाह के यहां से कुरान लाके मुझे सुना रहे हैं, और कुरान कोई लिखा हुआ नहीं आता था, जिब्रील आकर के सुनाते थे। तो हुजूर को पहली फिक्र ये होती थी कि कुरान मैं पढूं, जिब्रील जब पढ़ावे तो मैं खुद भी कुरान पढूं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन के साथ साथ कुरान पढ़ना शुरू कर देते थे। दूसरी बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फिक्र होता कि ये कुरान मुझे याद हो जावे, क्योंकि जिब्राइल मुझे सुना रहे हैं और मुझे सहाबा को सुनाना है, उम्मत को सुनाना है, तो ये कुरान मुझे याद हो जावे। तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे ध्यान से उसको पढ़ करके याद करने की कोशिश करते थे। तो देखो, एक तो जिब्राइल से कुरान सुनना, दूसरा जैसा जिब्राइल ने पढ़ा ऐसा हूबहू कॉपी टू कॉपी पढ़ना, तीसरा ये है कि इसको याद कर लेना, अल्फाज याद करना, पढ़ने का तरीका याद करना। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ होती थी, और हुजूर जिब्राइल जब पढ़ते थे तो आहिस्ता आहिस्ता धीमे धीमे अपने होंठ को हिलाते थे, और धीरे धीमे इसलिए पढ़ते थे ताकि जिब्राइल जो पढ़ रहे हैं उनके पढ़ने में और उनसे सुनने में डिस्टर्ब ना होवे। देखो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आदाब सीखो। जिब्राइल सुना रहे हैं, तो जिस वक्त जिब्राइल कुरान सुना रहे हैं तो हुजूर आहिस्ता आहिस्ता धीमे धीमे अपने होंठ हिला के पढ़ते थे ताकि हुजूर को याद हो जावे। जोर से क्यों नहीं पढ़ते हुजूर? चूंकि जिब्राइल से सुनना है और जिब्राइल से जो सुन रहे हैं उसमें डिस्टर्ब न होवे, खलल न होवे, इसीलिए हुजूर अपने आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते थे। तो एक वक्त में जिब्राइल से सुनना, उसी वक्त पर पढ़ना, उसी वक्त पर याद करना, उसी वक्त जिब्राइल ने जैसा सुनाया हू बहू वैसा ही उसको पढ़ना, अल्लाहु अकबर। कितने सारे काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आ गए। इसीलिए हुजूर को तकलीफ होती थी, मशक्कत होती थी, एक साथ चार पांच काम करना। अल्लाह ताला ने میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تکلیف کو آسان کر دیا اور کیا فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب جبرائیل آ کر کے قرآن سناوے تو اس وقت آپ کا ایک ہی کام ہے، اور حضور کو ایک ہی کام فرمایا، کون سا؟ دھیان سے سن لو، بس ایک ہی کام، آپ کو ہونٹ بھی نہیں ہلانے کے، زبان سے پڑھنے کا بھی نہیں، یاد کرنے کا ٹینشن بھی نہیں لینے کا، کچھ نہیں، آپ کا ایک ہی کام کہ جب جبرائیل پڑھے تو تم دھیان سے سن لو، بس ایک ہی کام دے دیا۔ اللہ اکبر، کتنی آسانی کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ پھر دوسرا بڑا وعدہ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، عجیب وعدہ، کہ اس پورے قرآن کو جتنی آیت جبرائیل آپ کو سنائیں گے اس کو آپ کے دماغ میں، دل میں یاد کرا دینا، ہماری ذمہ داری ہے۔ انا علینا جمعہ، جبرائیل جتنا سنائیں گے، ایک آیت سناوے، آیت کا ٹکڑا سناوے، بڑی سورت سناوے، جتنا بھی سناوے، اس کو آپ کے دل میں یاد کرا دینا، آپ کے دماغ میں یاد کرا دینا، ہماری ذمہ داری ہے۔ کتنا بڑا اللہ نے وعدہ فرمایا۔ اسی لیے میں آپ سب کو بھی نصیحت کرتا ہوں، دین کی بات دھیان سے سن لینے کی، جب قرآن پڑھا جاتا ہو، دین کی بات بیان کی جاتی ہو، دھیان سے سن لینے کا، اللہ تعالیٰ اس کو دماغ میں انشاءاللہ یاد کرا دیں گے۔ لیکن اب تو ہم لوگوں کا حال بہت برا ہے، جب قرآن پڑھا جا رہا ہے، دین کی بات بیان ہو رہی ہے، تو آپس میں بات چیت کرتے رہتے، گپ شپ گپ شپ، گپ چپ کرتے رہتے، موبائل لے کر کے اس کے اوپر کھیلتے رہتے، واٹس ایپ پر ماتھے مارتے رہتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ دین کی بات یاد نہیں رہی، قرآن یاد نہیں رہا۔ قصور ہمارا ہے، گناہ ہمارا ہے۔ جس وقت قرآن پڑھا جاوے، جس وقت دین کی بات بیان کی جاوے، دھیان سے سن لو، دماغ میں اللہ تعالی یاد کرا دیں گے انشاءاللہ۔ اور دیکھیے، پھر بہت سو کو قرآن یاد ہوتا ہے لیکن پڑھنا بھاری پڑتا ہے۔ ایک آدمی کو قرآن یاد ہے لیکن مصلے پہ جا کے پیر ہل جاتے ہیں، پڑھ نہیں سکتا وہ، تو اللہ تعالیٰ نے اور ایک بڑا وعدہ فرمایا، انا علینا جمعہ وقرآنا، یہ قرآن آپ کے دل دماغ میں ہم یاد بھی کرا دیں گے اور اس کو آپ کی زبان سے ہم پڑھوا بھی دیں گے۔ یعنی جب آپ کو پڑھنا ہو تو بے تکلف آپ قرآن پڑھیں گے، جیسے ہم کو صورتیں یاد ہوتی ہے، خاص کر کے 30ویں سپارے کی چھوٹی چھوٹی صورتیں، تو جب ارادہ ہوئے، وچار آیا، من میں آیا، پڑھنا چالو، کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کا احسان ہے، قرآن کا معجزہ ہے، لفظ بلفظ، شبد شبد، ورڈ ورڈ، حرف حرف، دماغ میں یاد ہو جانا، اور جب پڑھنا ہو تب فٹافٹ زبان سے چالو ہو جانا، یہ قرآن کا چمتکار ہے، قرآن کا معجزہ ہے، اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اور دیکھو، بس جب یہ آیت آ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک ترتیب بدل ڈالی۔ جب جبرائیل آ کے پڑھتے تھے تو حضور بالکل دھیان سے سنتے تھے، بالکل دھیان سے سنتے تھے۔ اور پھر اللہ تعالی کا وعدہ، جتنا جبرائیل نے سنایا حضور کو یاد ہو گیا، اور پھر جبرائیل کو حضور یاد کیا ہوا سنا بھی دیتے تھے۔ جتنا حضور کو قرآن یاد ہو گیا، فوراً यानी जिब्रेल ने आके जितना सुनाया इतना याद हो गया, और इतना हुजूर जिब्रेल को सुना भी देते थे, फौरन सुना देते थे। कितना अजीब, आज कोई है ऐसा उस्ताद ऐसा सबक कि इधर उस्ताद ने सबक सुनाया, इधर याद हो गया और इधर उसने सबक फिर से सुना भी दिया। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं, और वो भी कुरान की बरकत, हदीसे पाक की बरकत। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजिजा चमत्कार कि जिब्राइल ने सुनाया, हुजूर को याद हो गया और हुजूर ने फौरन जिब्राइल को सबक सुना भी दिया, यानी टैली हो गया कि नहीं जो याद हुआ है बराबर याद हुआ है। चूंकि अभी सहाबा को सुनाना है, उम्मत को सुनाना है, कोई भी लफ्ज हर्फ फेरफार इधर उधर नहीं होना चाहिए। सुभान अल्लाह, कितने अजीब तरीके से ये कुरान उम्मत को पहुंचा, आप समझो। और देखो, कुरान के अल्फाज, कुरान के शब्द, कुरान की आयत, कुरान की पंक्ति, ये याद हो जावे, उसके अलावा भी आगे जिम्मेदारी है, वो भी सुनो कि किस जगह पर मद करना। हम मद करते हैं ना, ये खाने का मद नहीं, ध्यान से समझो, मद मीम और दाल, मद वो खींचते हैं, वो अलिफ लाम मीम, ये खींचा ना, इसको मद कहते हैं। ये छोटा मद होता है, बड़ा होता है, मुत्तसिल होता है, मुनफसिल होता है, ये मद कहलाता है। फिर उसमें तशदीद होती है, तशदीद वाले हर्फ पढ़ते हैं। फिर उसके अंदर कहां रुकने का कहां नहीं रुकने का, ये आयत है ना, हम अलट टप नहीं पढ़ सकते, उसके रुकने की जगह भी फिक्स है। फिर कुरान के जो अल्फाज और कुरान के जो शब्द है अरबी के, वो मुंह में से, दांत में से, जबान पर से, होंठ में से, गले में से, कहां से अदा होंगे, कहां से उसका उच्चार करने का, कहां से उसको पढ़ने का बोलने का, वो जगह भी फिक्स है, उसको मखरज कहा जाता है। ये पूरा मुंह, 32 दांत, बीच में जुबान, फिर होंठ, फिर गला। तो ये हुरूफ और शब्द जो है, अलीफ बा ता सा जीम हा खा दा जाल, ये सब हुरूफ को उच्चार करने की, बोलने की, अदा करने की जगह फिक्स है, और उसी का नाम रखा जाता है मखरज। मखरज किसको कहते हैं कि ये जो तख्ती में बच्चों को अलिफ से लेकर या तक जो हुरूफ शब्द पढ़ाए जाते हैं, तो कौन सा हर्फ कहां से पढ़ने का, कौन सी जगह से पढ़ने का, उसका कानून है, उसको मखरज कहते हैं। तो ये कुरान जिब्रील अमीन जैसा पढ़ते थे, अल्लाह ताला को जैसा चाहिए ऐसा जिब्रील पढ़ते थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे पढ़ने का, पढ़ने की स्टाइल कैसी होगी, शब्द को कैसे अदा करने का, उच्चार कैसा करने का, मखरज कौन सा होगा, वो भी हूबहू हुजूर को आ जाता था और हुजूर उसी के मुताबिक कुरान पढ़ते थे। कितनी बड़ी अल्लाह ताला की नेमत, अंदाजा लगाओ। फिर आगे की बात सुनो, अब आ गया कुरान का मीनिंग। जिब्राइल ने सुनाया, हुजूर ने सुना, हुजूर को याद हो गया, फिर हुजूर ने जिब्राइल को सबक सुना दिया, जैसा सुनाया था तजवीद किरात के कायदे के मुताबिक वैसा हुजूर ने सुना भी दिया। अब उसका मीनिंग, उसका मतलब, वो हुजूर को एक फिक्र रहती थी, तो अल्लाह ने क्या फरमाया, इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना फैज़ा क़रअनाहु फत्तबि क़रआना थुम्मा इन्ना अलैना बयाना। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान का मीनिंग, कुरान की तफसीर, कुरान का मायना, ये भी हम आपकी जुबान से बयान करवा देंगे। अल्लाह ताला ने हुजूर को कुरान मजीद भी दिया, कुरान का मीनिंग भी दिया, कुरान का मायना भी दिया, कुरान की तफसीर भी दी, कुरान का तर्जुमा भी दिया, ये सब अल्लाह की तरफ से दिया गया। इसीलिए एक हदीस में फरमाया इन्नी ओतितुल कुरान व मिसलहू माहू, मुझे अल्लाह ने कुरान भी दिया और कुरान के साथ कुरान जैसी चीज भी दी, और वो है कुरान की कॉमेंट्री, कुरान की तफसीर, कुरान का मीनिंग, कुरान का माना, हदीस पाक जो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। कितनी बड़ी नेमत हो गई। और देखो, पहले मैं आपको बतला चुका हूं कि 22.5 साल में अल्लाह ने कुरान उतारा। अब हर साल रमजान आती है, तो जब रमजान का महीना आता तो पूरे 11 महीने में और 12वें महीने रमजान में जितना कुरान उतरता उसका दौड़ जिब्राइल के साथ हुजूर कर लेते थे। बड़ी अजीब बात है, ध्यान से सुनो। साल में 12 महीने, अब रमजान का महीना आया तो रमजान से रमजान पूरे साल में जितना कुरान जिब्राइल ने सुनाया वो पूरा कुरान जो हुजूर को याद है उसका दौड़ होता था, हर साल दौड़ होता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्राइल अमीन के साथ दौड़ करते थे, यानी रिपीट याद करते थे। और जिस साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया से जाने का वक्त था वो बरस के अखीरी रमजान में हुजूर ने डबल दौड़ किया, 2 मरतबा दौड़ किया। इसीलिए मैं आप सबको कहता हूं, जो नाजिरा पढ़ते यानी जो हाफिज नहीं है, सब लोग कुरान का दौड़ करो, रमजान में दौड़ करो, पूरे साल दौड़ करो और सही कुरान सुनाओ, पढ़ो। और हाफिज लोगों को भी कंटिन्यू लगातार बराबर दौड़ करते रहना चाहिए। और इस आयत से एक बात ये सीखने को मिली कि जब इमाम साहब नमाज में कुरान पढ़ते हो, तरावी में, फर्ज में, वितर में, ईद की नमाज में, तो अपने पीछे कुछ नहीं पढ़ने का, चुपचाप सुनने का। फैजा कराना हु फत्तबे कुराना ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजल बिह इन्ना अलैना जमअहू व कुराना फैजा कराना हु फत्तबे कुराना। यानी इमाम साहब के पीछे अपने पढ़ते नहीं रहने का, बाज लोग है ना इमाम साहब के पीछे भी पढ़ते रहते हैं, ये गलत तरीका है, नहीं पढ़ने का गुनाह हुए, ऐसा काम नहीं करने का, ध्यान से सुनने का, इमाम साहब जो पढ़ते हैं ना वो चुपचाप सुनने का। यहां उलमा और तलबा के फायदे की एक बात जिमनन बतला दो, ऐसे तो मैं आमतौर पर बतलाता नहीं हूं, लेकिन हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है, और अभी शव्वाल का महीना है, मदरसों के शुरू शुरू के दिन है, तो इनके फायदे के लिए एक बात बतला दूं कि सबक के अंदर हमारे यहां इबारत पढ़ते हैं बच्चे, तो जो लड़के की, जिस स्टूडेंट की इबारत पढ़ने की बारी हो, हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब लिखते हैं कि वो तालिब इल्म उस्ताद की जगह पर है, उस्ताद का कायम मुकाम है जो इबारत पढ़ता है, तो जब वो तालिब इल्म इबारत पढ़े तो दूसरे तमाम क्लास के अंदर जो बच्चे मौजूद है उनको चाहिए कि वो ध्यान से इबारत को सुने, नंबर 2। फिर जब इबारत का तर्जुमा हो तो तर्जुमा भी ध्यान से सुने। फिर नंबर 3, बाद में उस इबारत में जो मीनिंग है, मतलब है, इश्काल, जवाब, मफहूम, अक़वाल, वो सब चीजों की तरफ ध्यान देने का। यानी इबारत के वक्त इबारत में ध्यान, तर्जुमे के वक्त तर्जुमे के अंदर ध्यान, मतलब बयान करते वक्त मतलब में ध्यान, ये 3 चीजों में अलग अलग ध्यान देना इसी आयत से हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने साबित किया है। और देखो, ऊपर वाली आयतों के साथ थोड़ा सा रब्त भी समझ लो। पहले बयान किया गया बला कादिरीन अला अन नुसव्वी बनाना, तो जो अल्लाह ताला इतनी भारी हिफाजत करते हैं कि इंसान के पोरवे, टेरवे और उसके स्केच, उसकी लाइनिंग, उसकी अल्लाह हिफाजत करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला कुरान को कैसे जो है भूलने देंगे, कैसे कुरान को जाये होने देंगे। अल्लाह ताला कुरान की भी इंशाअल्लाह हिफाजत फरमाएंगे। अब कुरान जैसी अजीमुशान नेमत, कुरान जैसी इतनी बड़ी नेमत, लेकिन बहुत सारे लोग कुरान पर ध्यान नहीं देते, कुरान पढ़ते नहीं, कुरान सुनते नहीं, कुरान के मुताबिक अमल नहीं करते, बल्कि वो दुनिया दुनिया दुनिया, माल माल माल, दौलत दौलत दौलत, रुपया रुपया रुपया, ये सब के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो आगे फरमाए आयत में وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ, भाई आखिरत को तुम भूल गए, मरने के बाद की जिंदगी को भूल गए, नहीं आखिरत को याद रखो। आखिरत में कुरान का पढ़ना काम आएगा, कुरान पर अमल करना काम आएगा। हदीस शरीफ में आता है हुब्बुद दुनिया रासु कुल्ली खतीआ, तमाम गुनाहों की जड़ ये दुनिया की मोहब्बत है, दुनिया की नापाक मोहब्बत, दुनिया की इसराफ वाली मोहब्बत, ये तमाम गुनाहों की जड़ है। और एक हदीस में अजीब बात इरशाद फरमाई, मन अहब्ब दुनियाहु अदर्र बि आखिरती व मन अहब्ब आखिरतहु अदर्र बि दुनिया फआसिरु मा यबका अला मा यफना औ कमा قال عليه الصلاه والسلام। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने दुनिया से दोस्ती की, दुनिया में दिल लगाया, तो आखिरत में नुकसान होगा, और जिसने आखिरत से मोहब्बत की तो उसका दुनिया के अंदर नुकसान होगा। लिहाजा आखिरत की बाकी रहने वाली नेमतों के लिए दुनिया की फानी नेमतों को छोड़ो, दुनिया की फानी और खत्म होने वाली नेमतों के ऊपर आखिरत की बाकी रहने वाली नेमतों को तरजीह दो, उसको जो है प्रायोरिटी दो, उसको अहमियत दो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अनु फरमाते हैं कि अद्दुनिया वल आखिरत दर्रतान इन रदियत अहदुहुमा सखततिल आखिरा, दुनिया और आखिरत है ना दोनों शौकन है, शौकन। कोई शोहर की दो बीवियां हो तो दोनों बीवियों को 100% 100% दिल से खुश रखे, ये तो इम्पॉसिबल है। खुद कुरान में फरमाए वलन तस्ततीउ अन तादिलु बैनन निसाई वलौ हरस्तुम फला तमीलु कुल्लल मैल फतदरुहा कल मुअल्लका। दो बीवी हो तो दोनों को दिल से खुश रखना, 100% खुश रखना नामुमकिन है। तो हजरत अली फरमाते हैं कि दुनिया और आखिरत है ना दो बीवी जैसी है, एक राजी होवे तो दूसरी नाराज होवे, ऐसी है ये दुनिया। इसीलिए भाई आखिरत को राजी रखो, आखिरत को तैयार रखो, दुनिया के चक्करों में मत पड़ो। इस पर बहुत से मेरे पास लतीफे, एक लतीफा चलो सुना दो, जाओ सच्चा वाकया। एक आदमी की दो बीवी थी, कुदरती बात यह हुई कि दोनों बीवी का एक साथ इंतकाल हुआ, एक साथ दोनों मरी भी। ये आदमी बेचारा जिंदगी भर भी बहुत कोशिश करता था कि दोनों का हक बराबर अदा करे, दोनों को अच्छी तरह खिलावे, अच्छी तरह पिलावे, अच्छी तरह रखे, पूरी कोशिश करता था। कुदरती बात दोनों का इंतकाल एक साथ हुआ, दोनों बीवी का। अब इसने सोचा कि जनाजा जब उठाना है तो घर में तो एक दरवाजा मेन होता है, पहले एक जनाजा निकालेंगे फिर दूसरे का जनाजा निकालेंगे, तो उसमें भी ये होगा ना कि एक बीवी का पहले निकाला दूसरी बीवी का बाद में निकाला, तो वो भी थोड़ा सा ऐसा हो ना कि देखो इसका जनाजा पीछे निकाला नहीं, इसका जनाजा पहले निकाला। तो वो आदमी जो है ना फौरन गया मजूरों के पास और आकर के अर्जेंट दूसरा दरवाजा दीवाल तोड़ के बनवाया ताकि दोनों बीवियों का जनाजा एक साथ निकले, ताकि जर्रा बराबर भी ना इंसाफी नहीं होवे। बहुत अच्छी बात, अर्जेंट दीवाल टुड़वाई, दो दरवाजे बनाए, दोनों के जनाजे साथ निकाले, दोनों की कब्र में एक साथ उतारा, सब कुछ हो गया। अब ध्यान से सुनो,
दो बीवियां रखने वाले सुनो ध्यान से, कितना मुश्किल काम है, कोई आसान काम थोड़ा ये, खाने के खेल थोड़े ये खिलौने समझ रखे है तुमने। कहा रात को जब वो सोया तो उसकी जो है न एक बीवी ख्वाब में आई, और ख्वाब में आके क्या कहती है, मेरे शोहर अल्लाह तुम पर रहम करे, कल कयामत के दिन मैं तुम्हारी पकड़ करूंगी। वो तो चौंक गया कि मेरी काय की पकड़, मैंने तो इतना इंसाफ किया, इतनी बराबरी की, इतनी बराबरी की, तुम दोनों का जनाजा साथ निकालने के लिए अर्जेंट दो दरवाजे बनाए, सब इंसाफ किया, फिर कैसी पकड़ अल्लाह के यहां। तो कहा वो बीवी का जनाजा है ने तो नए दरवाजे से निकाला, ने मेरा पुराने वाले दरवाजे से निकाला ने, इसलिए अल्लाह के यहां पकड़ करूंगी। ले सुन लो, दोनों जो है ने शौकन में कभी जो है दिल से एक साथ खुश नहीं रख सकते, बहुत मुश्किल मसला है। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते, वो जो हो कयामत के दिन बहुत सारे चेहरे चमक चमकते होंगे, सुभान अल्लाह, दिल के अंदर ईमान, ईमान का नूर चेहरे पर, जिंदगी में अच्छे आमाल किए वो अच्छे आमाल का नूर चेहरे के ऊपर, चेहरे चमक चमक होंगे, और बहुत सारे लोगों के चेहरे उदास, जैसे बासी कड़ी नहीं पियेली होवे, दिवेल नहीं पियेला होवे, इस तरीके से बाज लोगों के चेहरे होंगे, जिनके अंदर ईमान नहीं होवे, जिनके अंदर अच्छे आमाल नहीं होवे। अल्लाह कयामत के दिन आपका और मेरा चेहरा चमकदार बना करके रखे, और देखो कयामत के दिन अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा। इला रब्बिहा नाजिरा, अल्लाह को देखते होंगे। देखो एक गुना की गलत बात में मिसाल देने में दे रहा हूं, है गुना की बात गलत बात, लेकिन एग्जाम्पल समझाने के लिए कह रहा हूं। ये लड़के होते हैं नौजवान, कोई खूबसूरत लड़की दिख गई तो कैसे देखते रहते हैं उसको, गोर गोर के गोर गोर के, ये गलत काम है, नहीं देखना चाहिए, हराम है। तो मेरे मुसलमानों सोचो कि दुनिया में कोई खूबसूरत औरत को आप गलत तरीके से घोर घोर के देखते रहते हो तो सारी दुनिया के हुस्न और खूबसूरती को पैदा करने वाले अल्लाह कितने ज्यादा खूबसूरत होंगे, और अल्लाह का नूर कितना प्यारा अजीब और उम्दा और अच्छा होगा। और कयामत के दिन जब अल्लाह का दीदार नसीब होगा तो फिर किसी चीज को देखने का ध्यान भी नहीं रहेगा। अल्लाह का जब दीदार होगा ने तो जन्नत की हूरों को देखना भी भूल जाएंगे, जन्नत के बंगलों को भी देखना भूल जाएंगे। खुदा का जब दीदार होगा, खुदा की जब ज़ियारत होगी, तो आदमी जन्नत की नेमतों को भी भूल जाएगा, इतनी प्यारी ज़ियारत और दीदार होगा। अल्लाह आपको और मुझको कयामत के दिन अपना दीदार, अपना ज़ियारत नसीब फरमावे। तीन तरीके की ज़ियारत होगी कयामत के दिन। नंबर एक, बहुत से ईमान वालों को हर हफ्ते में एक दिन यानी सात दिन में एक मरतबा जुमा जुमा को अल्लाह की ज़ियारत होगी, ये भी ईमान वाले होंगे बहुत सारे जन्नती। नंबर दो, बहुत से ईमान वालों को रोजाना सुबह शाम अल्लाह की ज़ियारत होगी, सुबह में भी दीदार शाम को भी दीदार। नंबर तीन, बहुत से ईमान वाले ऐसे होंगे कि हर वक्त जब देखना हो तब अल्लाह सुबहानहू व ताला का दीदार नसीब होगा, इसलिए कि जन्नतुल फिरदौस की जो छत है, दाबा है, सीलिंग है, वो अल्लाह का अर्श है। तो जन्नतुल फिरदौस वालों को तो अल्लाह को देखना तो यूं मुंह ऊंचा किया ने देख लिया। अल्लाहुम्म जालना मिन्हुम, अल्लाह आपको और मुझको उस जमात में शामिल फरमा देवे। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नकुम सतरौन रब्बकुम कमा तरौन अल-क़मर लैलतल बद्र लैस दूनहु हिजाब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल दी, दाखला दिया कि जिस तरह तुम चौदहवीं रात के चांद को देखते हो, बादल भी न होवे, धुआं भी न होवे,
पॉल्यूशन भी नहीं होवे, धुमाड़े भी उठते नहीं होवे, अभी कैसा साफ सुथरा वातावरण है, सब फैक्ट्रियां बंद थी तो कैसा साफ सुथरा हो गया था। तो कहा जिस तरीके से साफ सुथरे वातावरण में, साफ सुथरी आबोहवा में, जहां बादल न हो, धुआं न हो, मिट्टी उड़ती न हो, तो चौदहवीं का चांद आदमी कितनी अच्छी तरह देखता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत के दिन इसी तरह अल्लाह का दीदार नसीब होगा, बीच में कोई पर्दा नहीं होगा, कोई रुकावट नहीं होगी, और लाइव डायरेक्ट अल्लाह ताला का दीदार और जियारत नसीब होगी। लेकिन उस हदीस में हुजूर ने क्या फरमाया कि तुम फजर और असर की नमाज के जरिए से, फजर और असर की नमाज के अंदर खूब ध्यान रखो। मालूम हुआ कि फजर और असर की नमाज के जरिए अल्लाह के दीदार में बड़ी मदद होती है। ऐसे ये दोनों नमाज जरा भारी भी है, फजर में उठना ने असर के वक्त जो है दुकान ने काम छोड़ करके जाना, इसीलिए ये दोनों नमाज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये दोनों नमाज का खूब ध्यान रखो, इसकी बरकत से अल्लाह ताला कयामत के दिन अपना दीदार अता करेंगे, और अल्लाह का दीदार कयामत के दिन होने वाला है ये यकीन रखो, ये जरूरी है। और ये दुनिया के चक्करों से अपने आप को छोड़ा। हदीस में आता है अद्दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर, ये दुनिया मुसलमान के लिए कैद खाना है और काफिरों के लिए, बेईमानों के लिए जन्नत है ये दुनिया। हम लोग तो इंशाल्लाह मजे जो करेंगे ना, ओ जन्नत में जाके इंशाल्लाह मौज मजे करेंगे। दुनिया के अंदर तो सिर्फ जरूरत पूरी करने की जगह है, जरूरत पूरी करने की, असल मौज मजा उड़ाने की जगह जन्नत है। अल्लाह आपको मुझे सबको जन्नत की नेमतें अता फरमाए, जन्नत का मौज मजा अता फरमावे। अल्लाह ताला अपना नूरानी दीदार हम सबको कयामत के दिन अता फरमावे। कल्ला इजा बलगति तराकी वकील मन राक وظن أنه الفراق। سورة القيامة چل رہی تھی، یہ اس کی 26 27 28 نمبر کی آیت تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کے پاک ارشاد کا خلاصہ یہ ہے، ہرگز نہیں، جب جان ہسلیوں تک پہنچ جاتی ہے، حلق تک پہنچ جاتی ہے، اور بیمار کی خدمت کرنے والے کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے۔ عام طور پر جب لوگ بیماری میں تھک جاتے ہیں، ڈاکٹر، حکیم، وعید، تو اخیر کے اندر کوئی عامل اور باپو کو تلاش کرتے ہیں کہ باپو کے پاس بار کا علاج کراؤ، اور عرب کے اندر اس کا رواج بھی تھا، اور انسان کے آخری وقت پر فرشتے بھی آپس میں بات کرتے ہیں۔ من راق یعنی کون جو ہے اس کی روح اوپر لے جائے گا، نیک اعمال کی برکت سے جنتی فرشتے لے جاوے، یا گناہوں کی وجہ سے جہنمی فرشتے لے جاوے۔ اور وہ مرنے والا سمجھ جاتا ہے کہ جدائی کا وقت آ گیا۔ والتفت الساق بالساق، اور ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جاتی ہے۔ الى ربک یومئذ المساق، اس قیامت کے دن تمہارے رب کی طرف کھینچ کر چلنا ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں چلنا ہے۔ فلا صدق ولا صلى، یہ سب چیزیں بیان کی گئی، اس کے باوجود انسان نے ایمان کو مانا نہیں
اور نماز نہیں پڑھی. ولیکن کذب وتولا, بلکہ سچی بات کو جھٹلایا اور دین سے منہ پھرا لیا. ثم ذهب الى اهله يتمطى, پھر فخر کرتا ہوا اپنے گھر والوں کے پاس چل دیا, یعنی داعی کی دعوت چھوڑ کر گھر والوں کے پاس چلا گیا. اولا لك فاولا ثم اولا لك فاولا ثم اولا لك فاولا, پھر انسان تیری بربادی ہے سو بربادی ہے, تیرے لیے بربادی ہے سو بربادی ہے, پھر بربادی ہے سو بربادی ہے. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى, کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اس کو یوں ہی بیکار یعنی محمل چھوڑ دیا جائے گا؟ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى, کیا وہ ایک منی کا قطرہ نہیں تھا جو ماں کی رحم دانی میں ٹپکایا جاتا ہے؟ ثم كان علقة فخلق فسوى, پھر وہ ایک لوتھڑا بنا, پھر اللہ تعالی نے اس کو انسان بنایا اور اس کے اعضاء کو ٹھیک ٹھاک بنایا. فجعل منه الزوجين الذكر والانثى, پھر اسی میں سے مرد اور عورت دو قسم بنا دی. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى, کیا وہ خدا جنہوں نے انسان کو ابتدا میں بنایا وہ اس بات پر طاقت نہیں رکھتے کہ وہ مردوں کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر دے وے؟ یقیناً اللہ تعالی پوری طاقت رکھتے ہیں کہ مردوں کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر دے وے, اس کی اللہ تعالیٰ پوری طاقت اور پورے پوری قدرت رکھتے ہیں, اور اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے پوری قدرت رکھتے ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ القیامہ کی آخری آیت تلاوت فرما دی, یعنی حضور جب بھی تلاوت فرماتے تھے تو زبان سے یوں پڑھتے تھے, سبحانک اللہم بلا, یعنی اللہ آپ کی ذات پاک ہیں, آپ اس کی پورے پوری قدرت رکھتے ہیں. اور بعض روایت میں آیا کہ جب سورہ قیامہ کی آخری آیت پڑھتے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں پڑھتے تھے, بلا وانا علی ذالک من الشاہدین, کیوں نہیں میں اس بات پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں, میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی پورے پوری طاقت رکھتے ہیں. اللہ نے انسان کی زندگی کی آخری حالت کا عجیب منظر بیان فرمایا. جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے, آخری حالت شروع ہو جاتی ہے, سکرات شروع ہو جاتی ہے, گر گرے کی حالت شروع ہو جاتی ہے, اور روح بدن سے نکلنا چالو ہو جاتی ہے, تو اس وقت پر عجیب حالت ہوتی ہے. دیکھو, ایک آدمی اپنے گھر سے باہر نکلا تو گھر سے باہر نکلنے ہی ابھی لوگ اس کو مسافر کہنا شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ ابھی تو وہ شہر میں ہیں, اپنے محلے میں ہیں, لیکن لوگ کیا کہتے ہیں, دیکھو یہ مسافر چلا اپنے گھر سے. بالکل اسی طریقے سے انسان کی روح جب نکلنا شروع ہو جاتی ہے تو گویا انسان آخرت کا مسافر بن گیا, اللہ کے گھر کا مسافر بن گیا, اور اللہ کے گھر کی طرف جاتا ہے. اب جب آخری حالت چلتی ہوتی ہے, ڈاکٹر صاحب بھی کہہ دیتے ہیں کہ بھائی
अब 24 घंटे के ये मेहमान है। हकीम साहब को बुलाया, हकीम साहब ने नाड़ी देखी, नब्ज देखी, कहा बस अब ये ठंडे हो रहे हैं। वैद्यराज को बुलाया, उन्होंने भी कह दिया। तो आम तौर पर दुनिया में लोगों का एक मिजाज है कि जब कोई दवा असर नहीं करती, हकीम की दवा, डॉक्टर की दवा, वैद्य की दवा, तो लोग क्या कहते हैं, बरका हो गया है, बरका, कुछ जादू मंत्र जिन्नात भूत डाकण अला बला हो गया है। तो घर वाले आपस में कहते हैं कि भाई कोई बापू है, बापू हो तो ढूंढो कि आकर के इलाज करावे। और अरबों के अंदर ये इलाज के चक्कर बहुत थे। आज भी हमारे यहाँ क्या कम है, जिसको भी देखो मामूली मामूली बीमारी होगी तो भी कहता है कि भाई बाहर का हो गया है। भाई इलाज भी कराना चाहिए, डॉक्टर की दवा भी लेनी चाहिए, खाने पीने में एहतियात और परहेजी भी करनी चाहिए, अपने आमाल भी अच्छे रखने चाहिए। तो आज भी लोगों का यही चक्कर है कि थोड़ी भी तकलीफ हुई तो क्या बाहर का हो गया। तो मैं एक बात कहा करता हूं कि अंदर का माहौल बिगड़ता है तो बाहर का असर हो जाता है, और अंदर का माहौल अच्छा होता है तो बाहर का असर नहीं होता। अंदर का माहौल यानी घर में नमाज की पाबंदी हो, माशाल्लाह तिलावत हो रही हो, कुरान पढ़ा जा रहा हो, अल्लाह का जिक्र हो रहा हो, तो फिर घर में बाहर का असर नहीं होगा। और अगर अंदर का माहौल बिगड़ा हुआ है कि घर में नमाज नहीं पढ़ते, कुरान नहीं पढ़ते, हर वक्त फिल्म गाने म्यूजिक टीवी, तो फिर बाहर का असर होगा नहीं, तो क्या होगा, शैतान आएंगे घर में। तो अखीरी वक्त में जब लोग ना उम्मीद हो जाते हैं तो बापू की तलाश करते हैं। इसीलिए फरमाया मन राख यानी रुकिया, अरबी में ये तावीज गंडा फूक फांक करते हैं ना, इसको रुकिया बोलते हैं। और बाद हजरात ने इसका और तर्जुमा किया, राख के माने ऊपर चढ़ने वाला। तो गोया के जब इंसान का आखिरी वक्त होता है तो मलिकुल मौत जब आते हैं, रूह निकालने वाले फरिश्ते, तो उनके साथ सात फरिश्ते होते हैं। और हजरत मलिकुल मौत वो आकर के रूह निकाल करके इन सात फरिश्तों को रूह सौंप देते हैं, लो अब तुम ले जाओ। तो ये सातों फरिश्ते आपस के अंदर बहस करते हैं, डिस्कस करते हैं, कौन इसकी रूह जन्नत में ले जावे, कौन उसकी रूह जहन्नम में ले जावे। यानी इनके अंदर आपस में ये डिस्कस होती है कि ये आदमी कैसा है, ये ईमान वाला नेक आमाल वाला है कि इसकी रूह हम जन्नत में ले जावे, या बुरा है, गंदा है, गुनेगार है कि उसकी रूह हम जहन्नम में ले जावे। ये फरिश्ते आपस के अंदर डिस्कस करते हैं। और वो बेचारा मरने वाला आदमी बिस्तर के ऊपर पड़ा हुआ है, बिल्कुल आखिरी हालत है, और देखा कि घर वाले भी अब कोई मदद नहीं कर रहे हैं, तो अब वो क्या सोचता है, वजन अन्नहुल फिराक, उसको ख्याल होता है कि अब तो जुदाई होगी, घर वालों से जुदाई, दुनिया से जुदाई, जुदाई होने वाली है, घर बार से जुदाई, बीवी बच्चों से जुदाई, माल सामान से जुदाई हो रही है। और देखो अजीब लफ्ज अल्लाह ने आयत में इस्तेमाल फरमाया, वजन, क्या मतलब, इंसान को अखीरी वक्त में मरते मरते भी लालच ऐसी होती है कि उसको मौत के आने का यकीन नहीं होता कि मौत आने वाली है, यकीन नहीं होता। इसीलिए उसको तो अभी यही है कि नहीं अभी फिर मैं बच जाऊंगा, कोई बापू आके भूख मारेंगे और मैं दोबारा अच्छा हो जाऊंगा, और मेरा माल, मेरी दौलत, मेरा घर, मेरा बंगला, मेरे घर वाले सब मेरा हो जाएगा। इसीलिए जन्न यानी वो ख्याल करता है, विचार करता है, सोचता है कि अभी अलग होने का वक्त आया, यानी अखीरी वक्त में भी उसको यकीन नहीं आता। अजीब, ये इंसान की लालच है। अल्लाह ऐसी गंदी लालच से हम सब को
نجات عطا فرماوے عافیت کے ساتھ. اس کے بعد کیا ہوگا؟ والتفت الساق بالساق, پنڈلیاں لپٹنے لگتی ہے ایک دوسرے کے اوپر, اور ایک پنڈلی دوسری پنڈلی کے اوپر. یہ جو پیر کی پنڈلی ہے نا, آپ نے دیکھا کہ دنیا کے اندر جو لوگ دکان لگاتے ہیں, جیسے کہ فٹ پاتھ کے اوپر چٹائی بچھائی, کپڑا بچھا کر کے جو دکان لگاتے ہیں, لاری لگاتے ہیں, وہ شام کو سارے مال کی پیکنگ کرتے ہیں اور پیکنگ کر کے دکان بند کرنے کی تیاری کرنے لگتے ہیں. تو گویا کہ انسان کا زمین سے پیر لگا رہتا ہے, تو انسان اپنی پنڈلی پہ پنڈلی چڑھا کے گویا کہ اپنی زندگی کی دکان بند کرنا شروع کرتا ہے. بعض لوگ جو ہے نا, اپنے ہٹواڑوں میں اور گاؤں کے میلوں میں, اور ابھی گرمی کی موسم میں لاری پر دیکھا ہوگا کہ اوپر چھتری کپڑا وغیرہ لگا دیتے ہیں. اب جب دکان لاری بند کرنا ہو تو اوپر کا کپڑا لپیٹنا شروع کر دیتے ہیں, چھتری بند کر دینا شروع کر دیتے ہیں. یہ عجیب سسٹم ہے. تو گویا کہ انسان نے اپنی پنڈلی پہ پنڈلی چڑھا دی, پیر پہ پیر چڑھا دیا, گویا زندگی نام کی دکان بند ہونے کا وقت آ گیا. عجیب یہ وقت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس وقت کے اوپر ہماری حفاظت فرمائے. اور دیکھو جو روح ہے, روح وہ روح بدن کے اندر پھیلی ہوئی ہے, اور پورے بدن کے اندر روح ایسی پھیلی ہوئی ہے کہ پورے بدن کے اندر اس کا اثر موجود ہے. اب یہ روح جب نکلنا شروع ہوتی ہے تو پنجوں کی طرف سے, پیر کے تلووں کی طرف سے یہ نکلنا شروع ہوتی ہے. اب جب یہ پنجے کی طرف سے, پیر کے تلوے کی طرف سے نکلنا شروع ہوتی ہے, تو پہلے پیر کے تلوے ٹھنڈے ہوتے ہیں, پھر پیر ٹھنڈے ہوتے ہیں, پھر پنڈلی ٹھنڈی ہوتی ہے. اسی لیے جب آخری وقت ہوتا ہے اور لوگ مرنے والوں کے بارے کے اندر چیک کرتے ہیں, تو لوگ کیا کرتے ہیں, پیر پہ ہاتھ لگاتے ہیں, کہ پیر بالکل برف جیسے ٹھنڈے ہو گئے, چلو یہاں سے روح نکل گئی. گھٹنے پر ہاتھ لگایا, کہ ابھی یہاں تھوڑی تھوڑی گرمی ہے, چلو یہاں روح باقی ہے. پھر تھوڑی دیر بعد چیک کیا تو کہا گھٹنے بھی ٹھنڈے ہو گئے, چلو روح آگے نکل گئی. پھر جانگ میں روح آتی ہے, وہاں سے نکلتی ہے. گویا کہ پیر کے تلوے کی طرف سے روح نکلنا چالو ہوتی ہے, اور آہستہ 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 پنڈلی پہ آئی, گھٹنے پہ آئی, جانگوں میں آئی, کمر پر آئی, پیٹ پر آئی, یوں کرتے 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 روح نکلتے نکلتے آخر میں گلے پر آ کر کے باہر نکل جاتی ہے. تو جب پنڈلی پر سے روح نکل جاتی ہے تو دونوں پنڈلی بالکل ٹھنڈی ہو جاتی ہے, اور انسان اپنے دونوں پیر کو ہلا بھی نہیں سکتا, اتنا معذور محتاج کمزور ہو جاتا ہے. ہاتھ ہٹانا ہو تو بھی دوسروں کی مدد چاہیے, پیر ہٹانا ہو تو بھی دوسروں کی مدد چاہیے, خود کچھ نہیں کر سکتا. بالکل ایسا اخیری وقت میں ہو جاتا ہے. والتفت الساق بالساق, اور بعض حضرات نے عجیب مطلب بیان کیا کہ دو پنڈلی کا ملنگ ہے دنیا اور آخرت, کہ دنیا اور آخرت دونوں جوائنٹ ہو گئی, ایک دوسرے کے ساتھ مل گئی. دنیا کا آخری دن اور آخرت کا پہلا دن, دنیا کی آخری منٹ آخری گھڑی اور آخرت کی پہلی منٹ اور پہلی گھڑی دونوں آپس کے اندر جوائنٹ ہو گئے. اس کو فرمایا والتفت الساق بالساق, دنیا اور آخرت دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل گئی. اور دیکھو ایک مطلب یہ بھی لیا گیا ہے کہ دو سختی انسان کے سامنے ایک ساتھ آتی ہے، دو مصیبت، دو سختی، دو تکلیف ایک ساتھ آتی ہے۔ ایک سختی اور مصیبت کیا، مال چھوڑ دو، بیوی بچوں کو چھوڑ دو، گھر بار کو چھوڑ دو، اس کا رنج ہو رہا ہے، میرا بنگلہ چھوٹ جا رہا ہے، اب قبرستان جا کے سونا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑ کے قبرستان جانا ہے، اور خادموں کو چھوڑ کے قبرستان جانا ہے۔ جو لوگ دشمن ہوتے ہیں نا وہ مرنے پہ خوش ہوتے ہیں، گیا گیا، مرا مرا، بہت اچھا ہوا، اکھے ملنے کے لیے بھار تھا، سب کو دکھی کرتا تھا، سب کو کھجواتا تھا، سب کو ڈانٹتا تھا، اچھا ہوا مرا، جا رہا ہے، پورے محلے والے خوش۔ تو ایک غم، گھر چھوٹا، مال چھوٹا، دنیا چھوٹی، اس کی مصیبت، اور دوسرا اللہ اکبر آخرت کی مصیبت کہ روح لینے والے فرشتے آ گئے، آگے فرشتے قبر میں سوال جواب کریں گے، یہ سب ہونے والا ہے۔ تو ایک مصیبت دنیا چھوٹنے کی اور دوسری مصیبت آخرت کی، دونوں ایک ساتھ ہو گئی۔ اسی لیے فرمایا والتفت الساق بالساق، تو آخرت کی شروعات موت کے وقت سے ہوگی اور قیامت کے دن اینڈ ہوگا کہ اب جنت میں چلے گئے یا نعوذ باللہ جہنم میں چلے گئے، لاسٹ ڈیسیزن، لاسٹ فیصلہ ہو گیا۔ اور دیکھو دنیا میں یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جب آدمی کو بے چینی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو آدمی کیا کرتا ہے، پنڈلی ایک دوسرے کے اوپر مارتا ہے، پیر ایک دوسرے کے اوپر مارتا ہے، یعنی اپنے جو دو پیر ہے، دو پنڈلی ہے، تو ایک پیر دوسرے پر مارتا ہے بے چینی اور تکلیف کے وقت پر، اور موت کے وقت کے اوپر اتنی بے چینی، اتنی تکلیف، اتنی الجھن ہوتی ہے کہ آدمی ایک پنڈلی دوسری پنڈلی پر، دوسری پنڈلی پہلی پہلی پنڈلی پر، ایک دوسرے کے اوپر لگاتا مارتا پھرتا ہے، اور آدمی کو بڑی فکر ہوتی ہے کہ آگے آخرت میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا، اور انسان اخیری وقت میں اتنا کمزور کہ پیر ہٹا نہیں سکتا، تو کوئی نیک کام بھی نہیں کر سکتا، کوئی وصیت بھی نہیں کر سکتا، بالکل کمزور ہو جاتا ہے۔ حالانکہ زندگی اس نے گزاری کیسی، اللہ کو بھول کر کے۔ اس لیے فرمایا فلا صدق ولا صلى، اس نے زندگی میں قرآن کو سچا نہیں مانا، اللہ کو سچا نہیں مانا، نبیوں کو سچا نہیں مانا، قیامت کو سچا نہیں مانا، یعنی ایمان سچے دل سے قبول نہیں کیا، یا ایمان کا انکار کرتا تھا، ایمان کو مانتا ہی نہیں تھا۔ ولا صلى، اور نماز نہیں پڑھی۔ دھیان سے سنو، اللہ کے دربار میں جب پیش کیا جائے گا، رجوع کیا جائے گا، تو سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے اول ما یحاسب به العبد من اعماله الصلاۃ، انسان کے اعمال میں سے سب سے پہلا حساب نماز کا کیا جائے گا۔ عجیب معاملہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کے بعد بھی نمازوں کی پابندی عطا فرمائے۔ بہت سال پہلے کی ایک بات کہوں، ایک مرتبہ میں عید کے دن، عید کے تیسرے دن غالباً یا دوسرے دن، احمد آباد جا رہا تھا شام کو کرناوٹی ایکسپریس سے، 5:30 بجے کا ٹائم رہتا ہے جنرلی، تو سورت آ کر میں نے تراوا مسجد میں عصر کی نماز جلدی سے پڑھ لی تاکہ ٹرین کے اندر سہولت رہے۔ تو تراوا مسجد سے باہر نکلا نہیں تو وہاں باہر کھمبے کے اوپر ایک پوسٹر لگا ہوا تھا، پوسٹر گجراتی میں تھا، اس پر یوں لکھا ہوا تھا کھوائی گیا چھے، یعنی گم ہو گئے ہیں، نیچے لکھا ہوا تھا سودھی آپنار نے یوگیہ بدلو آپوامہ آوشے، یعنی جو کھوا گئے ہیں، گم ہو گئے ہیں، جو ان کو ڈھونڈ کے لائے گا اس کو انعام ملے گا۔ تو میں کھڑا رہ گیا کہ بھائی کون کھوا گئے، کون گم ہو گئے، تو نیچے پوسٹر میں لکھا ہوا تھا۔ ہماری مسجد کے مسجدوں کے نمازی عید کا چاند دیکھ کے گھوم ہو گئے ہیں، جو ان کو ڈھونڈ کے لائے گا اس کو انعام ملے گا۔ استغفر اللہ، عید کا چاند دیکھ کے نمازی گم ہو گئے، غائب ہو گئے، کھوا گئے، ایسا مت کرو بھائی۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ دیکھو کٹر سے کٹر آروپی جی بھی ہوتے ہیں، جب پکڑے جاتے ہیں مصیبت میں آتے ہیں تو بھی نرم پڑ جاتے ہیں، لیکن یہ تو کتنا ڈینجر آروپی۔ ولیکن کذب وتولا، قرآن کی آیتوں کو جھٹلاتا رہا، نبیوں کی خبروں کو جھٹلاتا رہا، اللہ کی طرف دھیان دینے کے بجائے پیٹ پھراتا رہا، منہ پھراتا رہا۔ عجیب دونوں چیز بیان کی، فلا صدق ولا صلا، ولیکن کذب وتولا، ایمان کو قرآن کو نبی کو اللہ کو سچا بھی نہیں مانا بلکہ جھوٹا مانا، اور منہ پھرایا نماز سے، اللہ سے، اللہ کی طرف دھیان دینے سے، بلکہ آگے کیا خطرناک کام کرتا تھا۔ ثم ذهب الى اهله يتمطى، یعنی وہ جو غلط کام کرتا تھا، گناہ کے کام کرتا تھا، اس پر شرم بھی نہیں آتی تھی بلکہ اس پر اکڑتا تھا، اکڑاتا تھا، اکڑاتا تھا۔ وہ کیسے اکڑاتا تھا؟ دیکھو اللہ کو نہ مانے، نبی کو نہ مانے، قرآن کو نہ مانے، دین کو نہ مانے، اور پھر اپنے دوستوں کے پاس، اپنی فیملی والوں کے پاس، اپنی محفلوں میں جا کر کے بہت گھمنڈ سے کہوے کہ میں تو کچھ مانتا وانتا نہیں ہوں قرآن کو، نعوذ باللہ، میں تو اللہ کو کچھ مانتا وانتا نہیں ہوں، میں تو اسلام کو مانتا وانتا نہیں، اوپر سے گھمنڈ کرے، اکڑ جاوے، تو ایسے آدمی کو مرنے کے بعد کیا سزا ہوگی؟ اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، یہ ویل کا مقلوب ہے۔ چار مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آیت میں فرمایا اولا 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 اولا، کیا مانا؟ کہ تیرا وہاں بہت، یعنی ایک میں اس کی تعبیر کر رہا ہوں، وہاں ڈینجر تیرا ویلکم ہوگا آخرت میں، بڑی خرابی، بڑی تکلیف، بڑی مصیبت، بڑی بربادی تیرے اوپر ہوگی۔ چار مرتبہ اولا ہے نا، کیا میننگ؟ موت کے وقت بھی تجھے تکلیف، قبر میں بھی تکلیف، قیامت کے میدان میں بھی تکلیف، اور جہنم کے اندر داخل ہوتے وقت بھی تکلیف۔ چار طرف کی تکلیف کو بتلانے کے لیے فرمایا اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، یا بار بار ریپیٹ کر کے انسان کو اللہ تعالیٰ غفلت سے جگانا چاہتے ہیں۔ غافلو، اے انسانوں، غفلت میں مت پڑے رہو، اللہ کو یاد رکھو۔ ایحسب الانسان ان یترک سدا، یہ انسان انسان ہے، یہ جانور تھوڑا ہی ہے، ڈھور تھوڑا ہی ہے کہ جانور ہے، صبح میں چھوڑ دیے چرنے گئے، شام کو آئے باندھ دیے، یا جنگل کے جانور، یا شہر میں جو جانور چھوڑ دیے جاتے ہیں، اکھا دن پھرتے رہتے ہیں، اس طرح یہ انسان تو جانور ہے، ڈھور ہے کہ اکھا دن گھومے پھرے، کھاوے پیوے، سووے، استنجا کرے، یہی تیرا کام؟ نہیں 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 نہیں، توبہ توبہ توبہ، تجھے اللہ نے اس کے لیے تھوڑا ہی پیدا کیا، تو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، تو بازار جاتا ہے، تو حلال روزی کماتا ہے، یہ اللہ کی عبادت کے لیے کرتا ہے، تجھے گھومنے پھرنے کے لیے تھوڑا ہی اللہ نے پیدا فرمایا۔ اللہ کے احسان کو یاد کر، خدا نے تجھ کو منی کے قطرے سے پیدا کیا، کتنے خوبصورت اللہ نے تجھے مزاج دیا۔ دیکھو جانوروں میں شیر ہے، اس کا مزاج کیسا ہے؟ پھاڑ کھاؤ پھاڑ کھاؤ، اٹیک کرو، حملہ کرو، پنجے مارو، ناخن مارو۔ تو بہت سے جانور ایسے ہیں کہ ہر وقت ایک دوسرے پر حملہ کرو، سانپ دیکھ لو، ڈنک مارو، کاٹو کاٹو، دوڑو، اور بعض جانور بیچارے ایک دم ٹھنڈے، बकरी, मुर्गी, इंसान को जो अल्लाह ने मिजाज अता फरमाया वो शेर और सांप जितना डेंजर भी नहीं और मुर्गी और बकरी की तरह बिल्कुल ठंडा भी नहीं, बल्कि न्यूट्रल बनाया, मुअतदिल बनाया अल्लाह ताला ने। फिर दूसरी बात, इंसान के बदन के अंदर जो आज़ा है, अवयव है, अंग है, पार्ट्स है, वो सब अल्लाह ताला ने ठीक ठाक दुरुस्त बनाए। देखो दोनों हाथ को देख लो, दोनों हाथ की लंबाई, दोनों की उंगलियां, दोनों की साइज सब एक जैसी। दोनों पैर देख लो, दोनों आंख देख लो, दोनों कान देख लो, दांत देख लो, कितना अल्लाह ताला ने पूरे लेवल के साथ इंसान को पैदा किया। अगर ये लेवल जरा भी गड़बड़ होता तो इंसान कितना बुरा दिखता, कितना भद्दा दिखता, कितना गंदा दिखता। तो एक मणि के कतरे में से पूरी बॉडी बनाई, बॉडी में अलग अलग आजा बनाए, अलग अलग अवयव बनाए और सबको बिल्कुल ठीक दुरुस्त बनाया। और अजीब आगे अल्लाह की कुदरत बनाओ, एक ही मणि के कतरे से कभी तो मर्द पैदा होता है, कभी औरत पैदा होती है, कभी मुजक्कर, कभी मोनस, कभी मेल, कभी फीमेल, सुबहान अल्लाह। और दोनों को अल्लाह ताला ने अलग अलग काम भी सौंपे। औरत का काम क्या रखा, घर संभालो, घर, खाना पकाओ, कपड़े धो, सियो, बच्चों की पा बच्चों को पालो। मर्द को जवाब दे रही थी बाहर के काम करो, रोजी कमा के लाओ, धंधा करके लाओ, पैसे कमा के लाओ। और दोनों को अल्लाह ताला ने मिजाज भी अलग दिया, दोनों को जवाबदारी भी अलग अलग दी, दोनों का बदन भी अलग तरीके से अल्लाह ताला ने बनाया। कितना प्यारा सिस्टम अल्लाह ताला ने बनाया, ये कुदरती तौर पर तकसीम किया हुआ एक प्यारा, निराला, उम्दा, अल्लाह की तरफ से एक शानदार सिस्टम के साथ इंसान को बनाया गया है। अब देखो, एक ही मणि के कतरे से, एक ही मां के पेट के अंदर बच्चा होता है। कभी वो मर्द होता है, कभी वो औरत होता है, कभी लड़का होता है, कभी लड़की होती है, कभी मेल, कभी फीमेल। देखो खुदा की कुदरत। अब आज लोग दुनिया में बाज लोग जो है ना उल्टी बातें करें, उल्टी मर्द और औरत दोनों को इक्वल बतला रहे हैं, एक जैसे। एक जैसे कभी हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते एक जैसे। मर्द और औरत कभी एक दूसरे जैसे हो ही नहीं सकते। जो लोग एक जैसे करने की बात करते हैं, इनको एक सवाल करने का कि चलो एक जैसे हैं ना, तो ऐसा करो कि तुम्हारी बीवी का एक बच्चा हो गया तो अब मर्द का एक बच्चा हो है। यानी बीवी से एक बच्चा हुआ तब एक बच्चा मर्द से हो, इक्वल ने बराबर बराबर, तो फिर तो ऐसा ही करना पड़ेगा ने। ऐसा कभी होवे? हरगिज नहीं होवे। अल्लाह ताला ने दोनों की पूरी सिस्टम अलग अलग बनाई है। मर्द की बॉडी, मर्द की सिस्टम अलग, औरत की बॉडी, औरत की सिस्टम अलग, मर्द की जवाबदारी अलग, औरत की जवाबदारी अलग, मर्द के काम अलग, औरत के काम अलग, मर्द की जगह अलग, औरत की जगह अलग, सब अल्लाह ताला ने सिस्टमेटिक बनाया है। अल्लाह ताला इस हकीकत को हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। जब ये हकीकत इंसान समझेगा तो फिर जो है दोनों बराबर बराबर इस तरह की उल्टी सीधे गांडे जैसी बात नहीं करेगा। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ अता फरमाए। आज जुमा का मुबारक दिन है, असर के बाद दुआ की कबूलियत की घड़ी होती है। खास तौर पर आखिरी जो वक्त होता है यानी मगरिब से आधा पौना घंटा पहले, तो उस वक्त दुआओं में, तस्बीह में, जिक्र में रहना चाहिए ताकि वो दुआ की मकबूल घड़ी हमको मिल जाए। अल्लाह ताला हम सबको ज्यादा नेक आमाल की तौफीक अता फरमाए। जुमा के दिन की दुआ की कबूलियत की घड़ी अल्लाह आपको मुझको अता फरमाए। अल्लाह